पाठ 20 अध्याय 20 निष्कर्ष। जैसे जैसे हम 10 आज्ञाओं के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, हम अंततः अधिक विवादास्पद भागों से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जो थोड़ा अधिक आरामदायक हैं। तो आप आराम कर सकते हैं। पुनः पढ़ें निर्गमन 20 का 12। पांचवा वचन, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति उचित सम्मान दिखाने और उनकी उचित देखभाल करने का आदेश देता है। ये हमें यह भी बताता है कि हमें इस सिद्धांत का पालन क्यों करना चाहिए ताकि इस देश में हमारे दिन लंबे हो सके। अब आपके अनुवाद के आधार पर आप कह सकते हैं, ठीक है, यह वास्तव में यहूदी है, क्योंकि जब परमेश्वर भूमि कहता है तो वह स्पष्ट रूप से इसराइल की भूमि का उल्लेख कर रहा है और निश्चित रूप से यहां अर्थ का एक पहलू है। लेकिन जैसा कि हम अब उम्मीद है समझ रहे हैं कि भले ही यहोवा ने मूसा की वाचा में इसराइल को ये सिद्धांत दिए थे, लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है। वास्तव में वे इस बारे में हैं कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड कैसे संचालित होना चाहिए। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए ये वे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार छुराए गए मनुष्यों को जीना है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल परमेश्वर की कृपा से सभी मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन का प्राप्तकर्ता और रक्षक होने के लिए चुना गया था, सिर्फ अपने लिए नहीं। यहां 12वें पद में भूमि के लिए इब्रानी में प्रयुक्त शब्द अदामा है और हां, यह पहले सृजित मनुष्य आदम के नाम से संबंधित है। ज्यादातर बार अदामा का अर्थ केवल पृथ्वी होता है, जैसे मिट्टी या जमीन, गंदगी, लेकिन इसका अर्थ पृथ्वी भी हो सकता है, जैसे कि हमारा ग्रह। कभी कभी इसका अनुवाद देश या भूमि में किया गया है, जैसे कि कनान की भूमि में, लेकिन इससे हमें वास्तव में अर्थ की गलत धारणा मिलती है। उदाहरण के लिए, जब बाइबल हमें बताती है कि मूसा पवित्र भूमि पर खरा था, तो इब्रानी में वह पवित्र अदामा पर खरा था। विचार यह है कि आम तौर पर अदामा को किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश के संदर्भ के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अक्सर हम बाइबल में इसराइलियों को इसराइल की भूमि को केवल भूमि के रूप में संदर्भित करते हुए देखेंगे, लेकिन उस उदाहरण में एक पूरी तरह से अलग इब्रानी शब्द का उपयोग किया गया है, एरेट्स। मैं यह दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहोवा कह रहा है कि हम अपने माता पिता के साथ वैसा ही प्यार, सम्मान और देखभाल से पेश आएंगे जैसा परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, तभी हम धरती पर लंबे और भरपूर जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दरअसल यह हमारा कर्तव्य है। इस सिद्धांत का एक कारण यह है कि मानव जाति के लिए प्रभु की योजना में परिवार की केंद्रीयता है। परिवार की स्थिरता उस अधिकार संरचना के उचित पालन से बनी रहती है जिसे परमेश्वर ने परिवारों के लिए स्थापित किया है, जिसमें माता पिता उस पदानुक्रम में सबसे ऊपर होते हैं। इस आदेश का उल्लंघन परिवार को विघटित कर देता है। समाज के मानदंड के रूप में इस आदेश का उल्लंघन राष्ट्रीय विघटन लाता है। यहेजकेल की पुस्तक 22:7 में यहेजकेल परिवार के टूटने को उन प्रमुख कारणों में से एक के रूप में दोषी ठहराता है जिसके कारण प्रभु ने यहूदा को बेबीलोन में निर्वासित होने दिया। पुनः पढ़ें निर्गमन 20 का 13। छठा वचन, मनुष्यों की हत्या के विरुद्ध निषेध है, लेकिन इस आशा को जिस संकीर्ण अर्थ में लिया जाना चाहिए उसे समझने के लिए हत्या शब्द को रेखांकित करें। यह आज्ञा हत्या के सामान्य अर्थ के बारे में नहीं है। इब्रानी में यहां इस्तेमाल किया गया शब्द रत्सच है। यह अन्यायपूर्ण हत्या और केवल अन्यायपूर्ण हत्या को संदर्भित करता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। इसका अर्थ पूरी तरह से वैध न्यायिक सजा को पूरा करने के रूप में निष्पादित करना नहीं है। इसका अर्थ युद्ध में दुश्मन को मारना या अपने या किसी अन्य के बचाव में घुसपैठिए को मारना नहीं है। हत्या शब्द रत्ताच का बहुत अच्छा अनुवाद है, और जिस तरह से आज की पश्चिमी दुनिया हत्या या मानव वध के बारे में सोचती है, ठीक वैसा ही इस पद का इरादा है। अब अगला सवाल यह है कि किसी इंसान की हत्या न्यायपूर्ण बनाम अन्यायपूर्ण है। खैर, यह उन कई विषयों में से एक है जिसकी व्याख्या यहोवा अध्याय 21 से शुरू करने जा रहा है, जो आगे आने वाले नियमों और अध्यादेशों में है, जिसे आम तौर पर कानून के रूप में संदर्भित किया जाता है, इब्रानी नागरिक संहिता के 613 कानून। हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम इस पर पहुंचेंगे। हत्या के विषय में बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि केवल उसे ही मानव जीवन लेने का अधिकार है। हालांकि तोरह ने विशेष रूप से मानव सरकार को इस अपराध के आरोपी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने का कार्य दिया है, और वह खून की सजा के लिए खून निकालने का कार्य सौंपता है। उत्पत्ति 9 में इस गतिशीलता को मृत्युदंड के लिए परमेश्वर के तर्क के रूप में स्थापित किया गया है। जो कोई किसी मनुष्य का खून बहाता है, उसका खून भी मनुष्य ही बहाएगा। किसी मनुष्य की अन्यायपूर्ण हत्या इतनी गंभीर क्यों है? फिर से उत्पत्ति 9 में हमें बताया गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए किसी मनुष्य की हत्या बहुत गंभीर है, और परमेश्वर के न्याय के लिए अंतिम दंड की आवश्यकता होती है। विडंबना यह है कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, मानव जाति खुद को अधिक सभ्य और मानवीय समझती है, और इसलिए अधिकांश समाजों ने अब मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। यह परमेश्वर के नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ एक सीधा विद्रोह है, और वास्तव में परमेश्वर की न्याय प्रणाली के अनुसार हत्यारे की जान न लेने से मानव जीवन सस्ता हो जाता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बाइबल मनुष्य को हत्यारे की मौत की सजा को कम करने की बिल्कुल भी छूट नहीं देती है, लेकिन मृत्यु दंड को कारावास में बदलने या यहां तक कि पीड़ित परिवार को फिरौती का भुगतान करने या मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त करने की यह प्रथा कोई आधुनिक घटना नहीं है। द्वितीय मंदिर काल के दौरान उसी समय यीशु जीवित थे, सैनहेड्रिन द्वारा मृत्यु दंड लगाया जाना दुर्लभ था। ईसाई हलकों में यह कहना प्रचलित है कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि रोमनों ने यहूदियों से मृत्यु दंड देने का अधिकार छीन लिया था, लेकिन यह बहुत सरल है। वास्तविकता में अभिलेखों से पता चलता है कि यहूदी न्यायालय को केवल स्थानीय रोमन प्राधिकरण के पास जाकर किसी अपराध के लिए अपना निर्णय देना होता था। रोमन गवर्नर मामले की समीक्षा करता था, और जब तक कि उसे कोई गंभीर आपत्ति न हो, और जैसा कि हम यीशु की फांसी के मामले में देखते हैं, कभी कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कोई गंभीर आपत्ति थी, रोमन इसे मंजूरी देते थे, और फिर यहूदी धार्मिक अधिकारियों के लिए मृत्यु दंड देते थे। दूसरे शब्दों में यहूदी मृत्यु दंड देने का आदेश देने में पूरी तरह सक्षम थे, बस रोमनों को निर्णय पर सहमत होना था और दंड देने के लिए एजेंट बनना था। यहूदियों ने लंबे समय से यह तय कर रखा था कि दया ही बेहतर रास्ता है, और अक्सर हथियारों की मौत की सजा कम कर दी जाती थी। मिश्राह ट्रैक्टेट मकोट में हम एक कथन पाते हैं कि सैनहेड्रिन की राय थी कि हर 7 साल में एक बार भी मौत की सजा सुनाना बहुत ज्यादा है। उस कथन पर टिप्पणी करने वाले एक रब्बी बेन अजरिया कहते हैं कि 70 साल में एक बार भी बहुत ज्यादा है। रब्बी अकीवा कहते हैं कि अगर वे सैनहेड्रिन में होते तो वे किसी भी परिस्थिति में किसी भी मौत की सजा की अनुमति नहीं देते। रब्बी गमलियल ने इस विकृत मानसिकता का जवाब दिया कि अगर सैनहेड्रिन ने उन सबसे कट्टरपंथी रब्बियों के दृष्टिकोण को अपनाया होता और कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया होता, तो इज़राइल में निर्दोष लोगों के खून की मात्रा नाटकीय रूप से बरक गई होती। क्या यह वही नहीं है जो हमने अमेरिका में देखा है, जहां कई राज्यों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है, और कानूनी व्यवस्था ने इसे उन राज्यों में लगभग असंभव बना दिया है जहां इसकी अनुमति है? मृत्युदंड को कम करने से रक्तपात कम नहीं हुआ है, बल्कि बरज गया है। प्रभु का सिद्धांत यह है कि एक हत्यारे का जीवन लेना वास्तव में एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। पुनः पढ़े निर्गमन 20:14। अब आपके संस्करण के आधार पर 7वीं आज्ञा या तो पद 14 है या यह पद 13 का हिस्सा है। 7वां वचन कि विवाहित व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अब जबकि हम इस पर गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि हमें शायद करना चाहिए, मैं इस आज्ञा के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक परमेश्वर सिद्धांत स्थापित करता है जिसे हम में से अधिकांश लोग पूरी तरह से नहीं समझते। समझने वाली पहली बात यह है कि व्यभिचार की पूरी अवधारणा परिभाषा के अनुसार केवल विवाह की संस्था के भीतर ही होती है। विवाह के बाहर व्यभिचार का कोई अर्थ नहीं है, और विवाह न केवल मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि यह मानव जाति के साथ परमेश्वर के रिश्ते में एक भूमिका निभाता है। विवाह की पूरी अवधारणा यह है कि एक मिलन होता है। जहां तक मानव से मानव संबंधों की बात है, शास्त्रों के अनुसार यह विवाह मिलन एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है। जबकि हम अक्सर विवाह को एक शारीरिक या यौन मामले के रूप में या हमारे अमेरिकी समाज में एक वित्तीय या कानूनी मामले के रूप में सोचते हैं, वास्तव में परमेश्वर सातवें आदेश में जिस मिलन की बात कर रहे हैं वह मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक मिलन है। निश्चित रूप से वर्तमान दुनिया में विवाह के भौतिक पहलू मौजूद हैं, और इसका कम से कम कारण मानव जाति का प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन यह बहुत दूर के भविष्य में समाप्त नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि यहोवा के दृष्टिकोण से व्यभिचार का पाप एक पति या पत्नी द्वारा अपने विवाह के बाहर शारीरिक यौन संबंध बनाने से कम है, जितना कि हमारी आत्माओं द्वारा किसी अन्य के साथ अनधिकृत मिलन में प्रवेश करने से है। परमेश्वर ने अधिकृत किया है कि एक पुरुष और एक महिला उसके सामने आपस में हर स्तर पर मिलन के लिए जुड़े रह सकते हैं, लेकिन केवल अपने बीच। उस विवाह के भीतर एकमात्र अन्य मिलन की अनुमति परमेश्वर के साथ मसीह के माध्यम से है। कोई यह तर्क दे सकता है कि एक प्रकार का तीसरा मिलन भी अनुमत है, जो विवाहित जोड़े और मसीह के शरीर सच्चे चर्च के बीच है, लेकिन वह मिलन बिल्कुल वही बात नहीं है। यही कारण है कि इसे मिलन के रूप में नहीं बल्कि एकता के रूप में कहा जाता है। आपने शायद गौर किया होगा कि बाइबल में मसीह के साथ हमारे मिलन के बारे में अक्सर विवाह संबंधी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, और उस विवाह संबंधी शब्दावली का इस्तेमाल न तो कोई सादृश्य है और न ही यह कोई उदाहरण है। यह बिल्कुल वास्तविक है, और इस तथ्य से हमें इस बात के बारे में ज्यादा जागरूक होने में भी मदद मिलनी चाहिए कि कैसे हमें यहोवा के दृष्टिकोण से विवाह के सार पर विचार करना है, और हमें मसीह के साथ अपने रिश्ते की प्रकृति पर कैसे विचार करना है। जिस तरह सांसारिक विवाह एक पुरुष और एक महिला का एक दूसरे के साथ एकता में आना है, उसी तरह उद्धार हमारा मसीह के साथ एकता में होना है। अब मैं इसे थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। भविष्य में एक शानदार विवाह भोज होने जा रहा है, जिसे अक्सर मेमने का विवाह भोज कहा जाता है, जिसमें मसीह की दुल्हन चर्च अर्थात सभी विश्वासी उसके साथ विवाह में प्रवेश करेंगे। यह हमें बताता है कि भले ही हम उसके प्रभुत्व को स्वीकार करने के तुरंत बाद मसीह के साथ एक हो जाते हैं, यानी जब हम बच जाते हैं, हम अभी भी उसके साथ एक औपचारिक और पूर्ण विवाह जैसी एकता में पूरी तरह से नहीं है। इसलिए मसीह के साथ हमारा मिलन और एकता किसी दिन इस वर्तमान युग के अंत में आज की तुलना में और भी अधिक पूर्ण हो जाएगी। पहले तो यह कथन दोहरी बात लग सकती है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अभी शादीशुदा तो हैं लेकिन यीशु से नहीं, जबकि शादी बाद में पूरी तरह से पूरी हो जाएगी? हालांकि ये अवधारणा हमें थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन मसीह के दिनों के इब्रानियों के लिए यह बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज की तरह जहां शादी के लिए पहले सगाई होती है, वास्तविक विवाह समारोह से पहले सगाई होती है, वैसा ही तब भी था। उस समय सगाई के साथ सगाई होने पर आज की तुलना में कहीं अधिक गंभीर और ठोस प्रतिज्ञा जुड़ा होता था। जैसे जैसे सही परिस्थिति आएगी, हम इब्रानी विवाह के सभी औपचारिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेंगे, जो न केवल दिलचस्प हैं बल्कि काफी शिक्षाप्रद भी हैं। अभी के लिए बस इतना समझिए कि सगाई के समय एक इब्रानी पुरुष और महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो वे विवाहित हों, यानी एक हद तक मिलन सगाई के बाद शुरू हुआ। एक चेथुबाह, एक कानूनी विवाह अनुबंध तैयार किया जाता था और उस पर सहमति होती थी, और यह सगाई के तुरंत बाद प्रभावी हो जाता था, और एक सगाई शुदा
जोरा औपचारिक कानूनी तलाक के आदेश के बिना सगाई से अलग नहीं हो सकता था। सगाई के दौरान बेवफाई को व्यभिचार माना जाता था। सगाई के बाद महिला की संपत्ति भी उसके मंगेतर की मानी जाती थी, जब तक कि वह उस पर अधिकार न छोड़ दे। सगाई के बाद शादी को 100% पूरा करने के लिए जो कुछ बचा था वह था विवाह की पूर्णता, शारीरिक मिलन, जो औपचारिक विवाह भोज के बाद होता था।
हम जो मसीह के हैं वर्तमान में उसके साथ सगाई की स्थिति में हैं। हम विवाह की प्रक्रिया में हैं अभी। मसीह आत्मा में हमारे साथ है और इसलिए हम आत्मा में उसके साथ एकता में हैं। लेकिन मेमने के विवाह पर्व पर वह व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ होगा और इसीलिए हम व्यक्तिगत रूप से उसके साथ एकता में होंगे। इसलिए मसीह के साथ हमारी वर्तमान सांसारिक सगाई के समय में भी हमारे लिए किसी ऐसी चीज के साथ एकता में आना जो निषिद्ध है, हमारे लिए मसीह के प्रति बेवफाई की स्थिति में आना, हमें यहोवा की नज़र में मसीह के साथ हमारे रिश्ते में व्यभिचार की स्थिति में डालता है। नए यूनानी शब्द मोइचोस, मोइकोस, जिसका आम तौर पर सही अनुवाद व्यभिचार होता है, को पुराने इब्रानी अर्थ में समझना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से समझ सकें कि परमेश्वर हमें व्यभिचार के बारे में क्या बता रहा है। जब इब्रानियों ने व्यभिचार की बात की तो उनका मतलब अपने साथी के प्रति विश्वासघात था। व्यभिचार माने जाने के लिए किसी दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने का खुला कार्य होना जरूरी नहीं था, हालांकि अक्सर ऐसा ही होता था। व्यभिचार क्या होता है और इसके लिए उचित सबूत और दंड समय के साथ काफी बदल गए। कुलपतियों के समय में व्यभिचार के लिए पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने की आवश्यकता होती थी। पति के संदेह के अलावा किसी अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं थी और वह खुद उसे मौत की सजा दे सकता था। मूसा के कानून ने दोष सिद्धि के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता को लाया। मसीह के समय तक बहुत सारे सबूतों की आवश्यकता थी। एक अदालत इस मामले पर फैसला सुनाती थी और मृत्यु अभी भी संभावित दंडों में से एक थी, लेकिन अधिक बार किसी तरह का सार्वजनिक अपमान सबसे बड़ा दंड था। मसीह के कुछ समय बाद ही व्यभिचार के पाप के लिए मृत्यु दंड हटा दिया गया, क्योंकि यह इतना प्रचलित हो गया था कि पुलिस के लिए इसे रोकना लगभग असंभव था। और जिन महिलाओं को मृत्यु दंड दिया जाता था उनकी गिनती इतनी अधिक थी कि मृत्यु दंड को लागू करना असंभव था। सभी बाइबल काल के दौरान व्यभिचार को विशुद्ध रूप से महिला अपराध और पाप माना जाता था, पुरुष इसके अधीन नहीं थे। बेशक मसीह ने स्पष्ट किया कि यह निश्चित रूप से परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं था, और व्यवस्था में हम देखते हैं कि पुरुष और महिलाएं समान परिणाम के अधीन थे। बाइबल के समय में किसी महिला का अपने साथी के प्रति विश्वासघात करना, जैसे कि किसी दूसरे पुरुष के साथ दोस्ती करना या अपने पति के खिलाफ असहमति में किसी दूसरे पुरुष का पक्ष लेना, कभी कभी व्यभिचार माना जाता था। इसलिए व्यभिचार, जहां तक परमेश्वर का सवाल है, आध्यात्मिक स्तर पर यहोवा के प्रति व्यक्ति की अविश्वास की व्यापक भावना को अपने साथ लेकर चलता है, और यहां तक कि इस अविश्वास में अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति को भी शामिल करने का विचार भी शामिल है, क्योंकि टैंगो के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, है ना। बात यह है कि मानव जाति के लिए कुछ ऐसे मिलन उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है, खासकर यदि हम मसीह के साथ भी मिलन में रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ मिलन ऐसे हैं जो परस्पर अनन्य हैं। शास्त्र बताते हैं कि मूल रूप से हम किसके साथ मिलन में हैं, यह परिभाषित करता है कि परमेश्वर हमें किस रूप में देखता है। तो एक स्पष्ट उदाहरण यह होगा कि यदि हम शैतान के साथ आध्यात्मिक मिलन में आते हैं तो हम मसीह के साथ भी आध्यात्मिक मिलन में नहीं हो सकते। ये दोनों मिलन परस्पर अनन्य हैं। अन्य निषिद्ध मिलन भी हैं, वे सभी विनाशकारी हैं, और संत पौलुस प्रथम कोरिंथियन 6 अध्याय में उनकी सूची प्रदान करता है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है, इसलिए हम उनमें से प्रत्येक से निपटेंगे नहीं। मुद्दा यह है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से मसीह के साथ हमारा मिलन मानव विवाह में हमारे मिलन के सबसे समान है। इसलिए मसीह के साथ मिलन में रहते हुए एकास्तिक के लिए निषिद्ध मिलन में शामिल होना
या पति या पत्नी के लिए अपने विवाह के बाहर मिलन में प्रवेश करना, बाइबल दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग करेगी, व्यभिचार। इसलिए हमें इस विशेष पाप की गंभीर प्रकृति को उससे कहीं अधिक व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है जितना हम आम तौर पर सोचते हैं। अब मुझे यकीन है कि यहां कुछ लोग तलाक और पुनर्विवाह के आधुनिक व्यभिचार पहलुओं के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि यह इसके लिए उपयुक्त सबक है, लेकिन मैं इसके बारे में बस कुछ संक्षिप्त टिप्पणियों करना चाहूंगा। सबसे पहले, व्यभिचार करना, चाहे जीवन साथी के प्रति बेवफाई करके हो या शायद आपके धर्मशास्त्र के आधार पर तलाक लेकर फिर से शादी करके, दोनों ही मामलों में अक्षम्य पाप नहीं है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो हम कर सकते हैं और जिसकी कीमत यीशु ने पहले ही नहीं चुकाई है। और कृपया यह भी समझें कि बाइबल में व्यभिचार की स्थिति के सामान्य अर्थ में इसका संबंध एक विवाहित महिला से था जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी, जिसे समाज द्वारा नीची नजर से देखा जाता था। यानी उसने कभी कानूनी तलाक नहीं लिया था, आम तौर पर इसलिए क्योंकि उसे तलाक देना या न देना पति का विशेष अधिकार था। दूसरी ओर, पुरुष आम तौर पर अपनी पत्नियों को दूसरी महिला के साथ रहने के उद्देश्य से तलाक देते थे, यानी वे बस उस महिला से ऊब गए थे जो उनकी पत्नी थी और दूसरी की तलाश कर रहे थे। जबकि यह उन दिनों सामाजिक रूप से स्वीकार्य था, यह यहोवा को स्वीकार्य नहीं था, और यीशु ने इस पर विस्तार से बात की या स्पष्ट करने की कोशिश की। दूसरा, बाइबल तलाक और पुनर्विवाह के मामले में बहुत संघर्ष करती है। पौलुस इस मामले से निपटने के लिए काफी आगे जाता है और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिनमें से कुछ के बारे में वह कहता है कि यह मसीह की ओर से है, बाकी उसकी निजी राय है। फिर भी वह और यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि तलाक और पुनर्विवाह के मुद्दे को संबोधित करने का कारण यह है कि यहोवा मानव जाति के दिल की वर्तमान कठोरता से अच्छी तरह वाकिफ है, और जबकि वह किसी भी तरह से तलाक को माफ नहीं कर रहा है, उसने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि हमारा विवाह खतरे में पड़ जाए तो हम और अधिक पाप न करें। देखिए, यह वह संदर्भ है जिसमें पौलुस ने यह बयान दिया कि कैसे कुछ मायनों में बेहतर है कि यदि आप कर सकें तो विवाहित न हो, क्योंकि यह एक ऐसी पहेली है जिसका सामना मानव जाति की वर्तमान भ्रष्ट स्थिति कर रही है, जिसमें अकेले लोग ब्रह्मचारी रहने में असमर्थ हो सकते हैं व्यभिचार से बचने के लिए, फिर भी विवाहित लोग एक दूसरे के प्रति वफादार रहने में असमर्थ हो सकते हैं व्यभिचार से बचने के लिए, या यहां तक कि विवाहित रहने के लिए पर्याप्त शांति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से साथ रहने में भी सक्षम नहीं हो सकते। और दोनों ही मामलों में जब हम असफल होते हैं तो इसका असर यहोवा के साथ हमारे रिश्ते पर पड़ता है, जिसके बारे में पौलुस बहुत चिंतित है। इस संबंध में आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे मसीह के दिनों से अलग नहीं है। और अंत में हमें इस सब में परमेश्वर की कृपा देखनी चाहिए। परमेश्वर के लिए यह मत सोचिए कि यदि आप तलाकशुदा हैं और अब दोबारा शादी कर रहे हैं तो आप एक अनधिकृत विवाह में हैं और परमेश्वर के साथ सही होने के लिए आपको इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्या यह पाप था जिसने हमें पहले स्थान पर उस स्थिति में डाल दिया? ओह हां। और यही बात मसीह और पौलुस दोनों कह रहे थे, क्योंकि बहुत से तलाकशुदा, खास तौर पर पुरुष, तलाक पर कोई पछतावा महसूस नहीं करते। उनका विचार था कि मूसा के नियमों और कुछ बाद की परंपराओं के तहत जोरों के तलाक के लिए कानूनी प्रक्रियाएं स्थापित की गई थीं। इसलिए अगर वे ईमानदारी से उन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते तो यहोवा के लिए सब ठीक था।
गलत। यदि आप तलाकशुदा हैं और दोबारा शादी कर चुके हैं तो क्या आपने इसके लिए और इसके लिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगी है? यदि आपने ऐसा किया है तो उसकी माफी स्वीकार करें और उस अपराध के लिए मसीह द्वारा आपकी ओर से किए गए पूर्ण भुगतान को स्वीकार करें और आपको एक नया मिलन देकर उनके द्वारा दिखाए गए अद्भुत दया के लिए कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ें, जिसके भीतर आप पुरुषों और महिलाओं के तरीके से काम कर सकते हैं और काम करने के लिए बनाए गए थे। भले ही उनका इरादा यह था कि हमें मूल मिलन के अलावा किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यार, यह परमेश्वर का प्यार है, इसलिए हमें मसीह की जरूरत है। निष्कर्ष यह है कि सतह पर हम व्यभिचार को शरीर का मामला मानते हैं, जो कि निश्चित रूप से है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मुद्दा भी है। यहां फिर से वही द्वंद्व है, भौतिक और आध्यात्मिक एक साथ मौजूद है, और व्यभिचार पूरी तरह से निषिद्ध संभोग के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह सातवीं आज्ञा न केवल हमारे मानवीय विवाह संबंधों से संबंधित है, बल्कि यहोवा और विशेष रूप से यीशुआ के साथ हमारे संबंधों से भी संबंधित है, जिसके साथ हर विश्वासी की सगाई होती है।
पुनः पढ़ें निर्गमन 20 का 15।
ये एक और है जो आपकी बाइबल में पद 13 के रूप में दिखाई दे सकता है। चोरी के बारे में 8वां वचन बहुत सीधा है, इसलिए यहां इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो ये कहता है। फिर भी चोरी के लिए इब्रानी शब्द गणब अपने साथ चोरी का विचार भी रखता है, छिपकलीपन। तो यहां विचार यह है कि किसी ऐसी चीज को प्राप्त करना जो आपके अधिकार में नहीं है, उसे चुपके से या धोखे से प्राप्त करना उतना ही चोरी है जितना कि 7-11 में जाकर अपनी जेब में ट्विंकी डालना। जाहिर है उस खाने को अपनी जेब में रखना एक अपराध है, लेकिन परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में धोखे से कुछ प्राप्त करना, भले ही वह तकनीकी रूप से कानूनी हो और इसलिए मुकदमा चलाने योग्य अपराध न हो, भी चोरी है।
पुनः पढ़ें निर्गमन 20 का 16। 9वां वचन अब। इसे अक्सर झूठ मत बोलों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निश्चित रूप से वह इस आज्ञा के अर्थ का हिस्सा है, लेकिन यह वचन कानूनी न्यायिक अर्थ के साथ लिखा गया है और मुख्य रूप से कानून की अदालत में किसी के खिलाफ झूठ बोलने के विचार को दर्शाता है, और यह तोरा कानून के ढांचे के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। यानी सभी प्राचीन इब्रानी संतों ने तोरह को परमेश्वर के न्याय के बारे में देखा, इसलिए इस वचन का संदर्भ बहुत हद तक झूठी गवाही के समान है। यानी अगर आप किसी मुकदमे में गलत जवाब देते हैं या किसी पर झूठा आरोप लगाते हैं, यह अच्छी तरह जानते हुए कि आरोप सच नहीं है, तो आप ही दोषी हैं। जिस तरह हमें परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, उसी तरह हमें दूसरों के बारे में जो कुछ भी कहना है उसमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए, खास तौर पर अगर वह नकारात्मक प्रकृति का हो। जब हम गपशप करते हैं या किसी पर ऐसी बात का आरोप लगाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, तो हम इस 9वें वचन के सिद्धांत का उल्लंघन करने के खतरे में हैं। पुनः पढ़ें निर्गमन 20 का 17।
10वां वचन है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, या उसकी पत्नी का, या उसके नौकर का, या उसके पशुओं का, या किसी और चीज का जो उसकी हो। अब साफ भाषा में लालच करने का मतलब है किसी चीज को वाकई बुरी तरह से चाहना कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या कि किसी के पास वह चीज है और आपके पास नहीं है तो आपको इतनी ईर्ष्या होती है कि आप इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, यह आपको कड़वा बना देता है, या इससे भी ज्यादा आम तौर पर कि किसी के पास वह चीज है जो आपके पास नहीं है, यह आपके साथ नाइंसाफी है क्योंकि आप उससे ज्यादा इसके हकदार हैं। अब इस वचन में उन चीजों की सूची जिनके लिए कोई लालच कर सकता है, जबकि पूरी तरह से शाब्दिक है। प्राचीन इब्रानी जीवन और संस्कृति के संदर्भ में भी बहुत कुछ है। इसराइल जैसी जनजातीय संस्कृतियों में किसी को पाने का ठेठ मूर्ति पूजक तरीका, जिससे वैसे तो यहोवा इसराइल को दूर करने की कोशिश कर रहा था, किसी और की चीज छीन लेना था। आमतौर पर आप अपने कबीले के बाहर से किसी को लेते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। दासों या पुरुष और दासियों का संदर्भ ज्यादातर संपत्ति और धन के बारे में होता है। नौकरों को आमतौर पर खरीदा जाता था, या वे स्वेच्छा से खुद को कुछ समय के लिए आपके पास गिरवी रख लेते थे। कभी कभी उन्हें बंधुआ सेवक भी कहा जाता था, ताकि वे परिवार का कर्ज चुका सकें या कोई व्यापार सीख सकें, या क्योंकि वे इतने गरीब थे कि यह उनके जीवित रहने के कुछ तरीकों में से एक था। लेकिन किसी की पत्नी दासों को ले जाना
उनका अपहरण करना भी आपके परिवार या कबीले के आकार को बढ़ाकर अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने का एक आम मूर्ति पूजक तरीका था। वैसे यह प्रथा समाप्त नहीं हुई है, हम इसे आज भी अफ्रीका और एशिया की जनजातीय संस्कृतियों में मौजूद पाते हैं।
जानवरों का जिक्र फिर से धन के बारे में है। चूंकि इजरायली मुख्य रूप से चरवाहे थे, इसलिए अब जानवर उनके पास मौजूद धन का प्रतिनिधित्व करते थे। आपके पास जितने ज्यादा जानवर होते, आप उतने ही ज्यादा अमीर होते।
और इन 30 लाख भटकते हुए इब्रानियों के प्रति पूरी निष्पक्षता से कहें तो उनके पास दिन रात अपने विचारों को व्यस्त रखने के लिए और क्या था, सिवाय इसके कि वे वह चाहते थे जो किसी और के पास हो सकता है, जो उनके पास नहीं है। हर दिन सामान बांधकर नहीं घूमते थे। माउंट सिनाई के बाद वे बस कुछ ही बार और आगे बढ़े। जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान वे कई महीनों तक एक ही स्थान पर रहे, जब तक कि चारागाह या पानी खत्म नहीं हो गया या परमेश्वर के निर्देश पर वे चले गए। एक बार बस जाने के बाद उनके पास बस बैठने और सोचने के लिए बहुत सारे खाली घंटे होते, और लोग तो इंसान ही होते हैं, खासकर जब उनकी स्थिति से असंतुष्टि बढ़ती जाती है तो बंजर रेगिस्तान में उनके पास और क्या चाहिए, सिवाय इसके कि उनके पड़ोसियों में से किसी के पास क्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, या कम से कम हमें यह जानना चाहिए, कि एक कल्याणकारी रामाज में जहां बहुत अधिक आलस्य है, दूसरों की चीजों का लालच करना एक राष्ट्रीय शगल बन गया है।
खैर, 10 वचनों पर हमारी नजर पूरी हो गई है, जो 10 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर परमेश्वर मानव जाति को दिए जाने वाले सभी बाकी आदेश और निर्देश देगा। तो ये बस आने वाली चीजों के लिए तैयारी है। निर्गमन 20 का 15 से 23 को पुनः पढ़ें। कुछ बाइबलों में यह 18 से 26 हो सकता है। इसराइल के लिए यह कैसा दिन था? मन को झकझोर देने वाली भौतिक घटनाएं जो पहाड़ को हिला रही थी, उसके शिखर से ऊपर की ओर उठता धुआं, यहोवा की आवाज की गरगराहट की ध्वनि, जब वह अपने न्याय प्रणाली के सिद्धांतों को सभी इसराइलियों के सामने प्रस्तुत कर रहा था, और घाटी के तल से गूंजते शॉफर के स्वर, इन सभी ने लोगों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव भर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह पतरस को लगा कि वह संभवतः परमेश्वर की उपस्थिति में खरा नहीं हो सकता, जब उसने अंततः समझ लिया कि यीशु कौन है, तो इब्रानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनके पैर मुश्किल से उन्हें इतना लंबा खरा रख पाए कि वे पवित्र पर्वत से दूर जा सके। इसलिए लोगों ने मूसा से उनके लिए परमेश्वर से बात करने के लिए कहा, और परमेश्वर से मूसा से बात करने के लिए कहा, और फिर मूसा ने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने क्या कहा था। दुर्भाग्य से यह पूरी तरह से आध्यात्मिक डर नहीं था, जिसके कारण उन्होंने मूसा से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, और मूसा ने तुरंत इसे पहचान लिया, और लोगों को 17वें पद में डरने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यहोवा शक्ति और महिमा के इस अद्भुत प्रदर्शन में उनके पास आने के 3 कारण थे। 1, उन्हें परखने या परीक्षा करने के लिए, इसराइल को परखने के लिए। वहां परीक्षण के लिए इब्रानी शब्द नाका है, और यह इब्री लोगों को यहोवा की न्याय प्रणाली की वस्तु के रूप में दर्शाता है। हम परीक्षण किए जाने या परीक्षण वाक्यांश की मानसिक तस्वीर को बहुत अधिक परमेश्वर द्वारा हमारे मार्ग में डाली गई चुनौतियों या बाधाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं, यह देखते हुए कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और फिर हम कैसे करते हैं, इसके आधार पर हमारा न्याय किया जाता है। जबकि कभी कभी हमारे जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं जिनका सामना यहोवा हमें करने देता है, यह इस विचार का प्राथमिक जोर नहीं है, बल्कि यह है कि प्रभु अपने लोगों को न्याय का मार्ग लगातार सिखा रहे हैं, इसे कैसे जीना है और इसे कैसे लागू करना है। दूसरा कारण यह है कि लोगों में परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए, परमेश्वर से डरना नहीं। विचार यह है कि परमेश्वर की पवित्रता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें परमेश्वर से कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उन्हें निश्चित रूप से डरना चाहिए। और तीसरा यह कि इब्रानियों को पाप न करना सीखना चाहिए। परमेश्वर ने अभी अभी उन्हें जो 10 वचन दिए हैं और 600 से ज्यादा नियमों की आने वाली श्रृंखला के जरिए लोगों को सिखा रहा है कि उसका पवित्र स्वभाव क्या है, न्याय और धार्मिकता का उसका मानक क्या है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अपने मूर्ति पूजक पड्डे ढोसियों की तरह जीवन के बारे में एक दर्शन विकसित कर सकें या धार्मिक सिद्धांत बना सकें या इसके बारे में बौद्धिक चर्चा कर सकें, बल्कि इसीलिए कि जिन लोगों को उसने अपने लिए अलग किया है वे उस परम पवित्र व्यक्ति का अपमान न करें, उसके विरुद्ध अपराध न करें जो अपनी कृपा के अनुसार अलग करता है। इसके बाद यहोवा ने मूसा से लोगों को याद दिलाने के लिए कहा, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए था, न कि वहां मौजूद लोगों के लिए, कि यह परमेश्वर ही था जिसने ये शब्द कहे थे, न कि केवल मूसा से। सभी ने इसे सुना। यह सबसे सार्वजनिक रूप से किया गया था ताकि कोई संदेह न रहे कि यह परमेश्वर का तरीका था, न कि मूसा का। ऐसा लगता है कि यहोवा एक बार फिर अन्य देवताओं के विषय को संबोधित कर रहा है और मूर्तियों बना रहा है। क्या वह सिर्फ अपने आप को दोहरा रहा है, दूसरी आज्ञा को दोहरा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी आज्ञा वचन में निश्चित रूप से कहा गया है कि कोई अन्य देवता नहीं, लेकिन फिर प्रतीकों और छवियों और चित्रणों को बनाने की बात की गई। यह इस मामले पर सबसे शुरुआती इब्रानी विचार के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है और जंगल के तंबू के निर्माण में इसकी पुष्टि हुई कि कोई छवि बनाने का निर्देश नहीं दिया था और निश्चित रूप से कोई भी नहीं बनाया गया था। और वह अपने व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है। यहोवा तय करेगा कि उसके लिए वेदियां कहां बनाई जाएंगी और उन्हें कैसे बनाया जाएगा। वेदी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बलिदान। वेदी कोई साधारण स्मारक किसी व्यक्ति या घटना की याद नहीं है। ये कोई मंच नहीं है जहां कोई बोलता है या प्रदर्शन करता है। चाहे मूर्ति पूजक हो या परमेश्वरीय, वेदी एक ऐसी जगह है जहां किसी देवता की पूजा की जाती है और उस देवता के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है। और जहां भी परमेश्वर तय करते हैं कि वेदी रखी जानी चाहिए, वहां संभवतः उचित बलिदान के साथ परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देंगे, लेकिन केवल वहां, न कि किसी भी जगह जिसे लोग चुने। और वह नहीं चाहता कि वेदी स्थल भव्य तरीके से बनाया जाए, क्योंकि हम सभी गहराई से समझते हैं कि जब हम यहोवा के लिए शानदार इमारतें बनाने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में क्या होता है, हम अपने लिए शानदार इमारतें बनाते हैं। अपने स्वयं के प्रयास, अपनी खुद की प्रतिभा और उपहार, अपनी खुद की समृद्धि हमारे आसपास जो हमें खुश करते हैं। यहोवा यहां कहता है कि बलिदान के लिए बस कुछ मिट्टी इकट्ठा करें और वह इसराइलियों को अनुमति देता है कि वे चाहें तो पत्थर की वेदी बना सकते हैं, लेकिन यह बस पत्थरों को ढेर करके रखना चाहिए जैसे वे उन्हें जमीन से उठाते हैं, क्योंकि उस चट्टान को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए उस पर कोई औजार ले जाना परमेश्वर की नजर में उस वेदी को अपवित्र करता है। खैर, अगर कभी परमेश्वर की ओर से कोई निर्देश था जिसे इब्रानी और ईसाई दोनों ने अनदेखा किया है, तो वह यह है, क्या हम यहोवा के लिए सबसे अद्भुत शानदार गिरजाघर, चर्च और आराधनालय नहीं बनाते हैं? हम उन्हें बेहतरीन सामग्रियों से सजाते हैं और उन्हें बेदाग रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और आइए हम जंगल में बने तंबू को, जो महंगी सामग्रियों से बनाया गया था, और बाद में मंदिर जो कि तंबू का स्थायी संस्करण था, को उस चीज से भ्रमित न करें जिसके बारे में परमेश्वर यहां बात कर रहा है। तंबू को एक शिक्षण उपकरण और एक जगह के रूप में बनाया गया था जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ रहता था। तंबू के बारे में हर चीज का बहुत महत्व होगा, भविष्यवाणी का महत्व। यह कुछ मायनों में यहोवा के स्वर्गीय निवास के अनुरूप भी था। हमारे दिनों में परमेश्वर अब पत्थर और लकड़ी और सोने और चांदी के मंदिर नहीं चाहता। हम उसके मंदिर हैं, जैसे कि निर्गमन में वह यहां बलिदान के लिए जमीन की मूल चाहता था, वैसे ही वह जमीन की साधारण धूल चाहता है जिससे हम बनाए गए थे, वह जगह जहां उसकी आत्मा मनुष्य के साथ रहती है, वे स्थान जहां हम संगति और सामुदायिक पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं,
वे आधुनिक समय के तंबू या मंदिर के समतुल्य नहीं हैं। परमेश्वर तो चाहते ही नहीं थे कि एक स्थायी मंदिर बनाया जाए। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि राजा दाऊद बहुत आग्रही थे कि वे एक मंदिर बनाएं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यहोवा चाहता है कि हम उसकी सेवा भव्य इमारतों के बजाय अपनी आज्ञाकारिता से करें, कि हम सुंदर इमारतों को बनाने और बनाए रखने में लगने वाले सारे पैसे और समय का इस्तेमाल भूखों को खाना खिलाने, बीमारों को ठीक करने, अपने लोगों इज़राइल को आशीर्वाद देने और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने के लिए करें।